सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से लागू 4 नई श्रम संहिताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा और पत्रकार विशाल दहिया।
नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के श्रम सुधार की। दरअसल सरकार ने 29 श्रम कानूनों को 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित कर दिया है। ये 4 श्रम संहिताएं हैं, मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020। तो आज हम सुर्खियों में कार्यक्रम में समझने की कोशिश करेंगे कि ये 4 संहिताएं क्या हैं, इनके खास बिंदु क्या हैं, इनके मायने क्या हैं। आलोक जी, शुरुआत इस बात से करते हैं कि आखिर जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि 29 श्रम कानून तो हमारे पास थे ही, हालांकि उनमें से कुछ इतने पुराने थे कि वो आजादी से पहले बनाए गए थे। अब 29 को अगर समेकित करके 4 श्रम संहिताओं में लाया गया है, पूरी प्रक्रिया कैसे रही?
विशाल जी, यदि हम देखते हैं कि कई कानून प्री इंडिपेंडेंस थे और समय के साथ इकोनॉमी इवॉल्व हुई थी, नया टाइप का वर्क आया था, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्क पहले नहीं हुआ करता था, सामाजिक सुरक्षा की जरूरतें बढ़ी थी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की जरूरतें बढ़ी थी, तो इन कानूनों को एक दूसरे तरह से देखने की आवश्यकता थी। दूसरा, यदि हम देखते हैं कि आज जिस तरह से हम एक विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना करते हैं, तो जब हम यदि देखते हैं तो दूसरे भी देशों ने कई तरह से अपने श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं, जिससे जो आधुनिक आर्थिक व्यवस्था है और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको जितने अच्छे से लीवरेज कर सकें एम्प्लॉयमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, तो इसके लिए श्रम कानूनों को फिर से देखने की आवश्यकता थी। ये प्रक्रिया लगभग 10 साल पहले शुरू हुई, इसके कई पहलू थे, इसमें काफी व्यापक कंसल्टेशंस हुए, पार्लियामेंट कमिटीज में कंसल्टेशंस हुए, जितने स्टेक होल्डर्स थे, एम्प्लॉयर्स हुए, एम्प्लॉयज हुए, ट्रेड यूनियंस हुए, सभी के साथ काफी व्यापक चर्चाएं हुई और उसके बाद इन कानूनों का सरलीकरण किया गया
जी।
तो यदि हम देखें कि ये इतने सारे कानून थे कि क्या होता था कि पहली बात तो कंप्लायंस में यदि उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, 44 कानून हुआ करते थे, 12 को रिपील किया गया और 3 कानून हैं उनको भी हटाया जाएगा, लेकिन जो 29 कानून हैं उनको 4 संहिताओं में सुनियोजित तरीके से समाहित किया गया
जी। और एक खास महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि जब हम लेबर कोड्स की बात करते हैं तो लेबर कंकरेंट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्यों को भी जो केंद्र सरकार जो एक खाका तैयार करती है कानूनों का, उसी की तर्ज पर उनको भी वो कानून बनाने पड़ते हैं। और मैं आंकड़ों पर नजर डाल रहा था, लगभग 2 दर्जन राज्य सरकारों ने तो ऐसा कर भी दिया है।
बिल्कुल, यदि आज हम देखते हैं कि हर राज्य ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहा है और इसलिए कई राज्यों ने अपने लेबर एक्ट में काफी रिफॉर्म्स कर लिए थे, लेकिन एक देश को एक तरह के कानून में लाने के लिए इन संहिताओं की बहुत आवश्यकता,
ताकि इस क्षेत्र को एक सूत्र में पिरोया जा
सके।
तो ये तो बात हुई जरूरत की और प्रक्रिया की। अब एक एक कर अगर इन लेबर कोड पर थोड़ी सी नजर डालें मिश्रा जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मजदूरी संहिता 2019 से।
जी हाँ।
क्या खास बातें हैं मजदूरी संहिता 2019 में और कौन सी वो बातें हैं जो नई हैं जिनको शामिल किया गया है, क्योंकि बदलता हुआ समय है।
तो देखिए कि मजदूरी संहिता बहुत ही व्यापक सुधार है। यदि अभी हम देखते हैं तो जो मिनिमम वेज है, जिसे हम न्यूनतम वेज कहते हैं, वो सिर्फ 30% वर्कर्स को ही मिलता है। इसके लिए पहले जो मिनिमम वेज एक्ट है उसके अंतर्गत शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, तो न्यूनतम वेज सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए ही तय किए जाते थे, स्टेट भी ऐसा ही करती थी और केंद्र भी ऐसा ही करते थे। अब इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है, मतलब मिनिमम वेज हर एम्प्लॉय के लिए सेट होगा। और यदि इसके और आगे जाते हैं कि देखिए, कई बार स्टेट बहुत कम मिनिमम वेज तय कर सकते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो केंद्र है एक फ्लोर वेज का कंसेप्ट लाया गया कि केंद्र एक फ्लोर वेज निर्धारित करेगा और कोई भी न्यूनतम वेज जो कोई भी स्टेट तय करती है वो फ्लोर वेज के नीचे नहीं हो सकता। इससे 2-3 चीजें होंगी। पहली बात तो कि कोई स्टेट फ्लोर वेज के नीचे नहीं जा पाएगा, तो कम से कम एक मिनिमम तो रहेगा ही पूरे देश में। इससे जो डिफरेंट राज्यों के बीच में जो विषमता है वो हट जाएगी। दूसरी और कुछ बातें हैं, जैसे टाइमली पेमेंट है, यदि महीने का वेज है आपको को सैलरी है 7 तारीख के पहले देनी आवश्यक है। दूसरी बात, क्या कई बार क्या होता था कि जो एम्प्लॉयर हैं एक सैलरी तो बहुत बड़ी कर दी, 1 लाख रुपए सैलरी कर दी, लेकिन बेसिक प्लस डीए किया सिर्फ 20,000 रुपए। तो यदि हम इसे देखें तो 20,000 पर जो सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन होता था, ईपीएफ का हुआ, ईएसआईसी का हुआ, मैटरनिटी बेनिफिट हुआ, बोनस हुआ, तो वो बहुत कम बनता था। तो जिससे जो सामाजिक सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाती थी। अब क्या कर दिया है कि यदि आपके अलाउंसेस 50% से ज्यादा एक्सीड करते हैं, ज्यादा होते हैं पूरी सैलरी का, तो वो वेज कंपोनेंट में ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सपोज मेरी सैलरी 20,000 रुपए है, तो मुझे बेसिक प्लस डीए यदि 7,000 रुपए मिलता है तो नहीं, मुझे कम से कम 10,000 मेरा बेसिक प्लस डीए कंसीडर किया जाएगा। उस पर एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को ईपीएफ ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, जिससे मेरी सामाजिक सुरक्षा काफी बढ़ेगी।
जी, तो ये बात हुई मजदूरी संहिता 2019 की। अब हम औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की बात करें तो इसमें क्या खास बातें हैं?
इसमें यदि हम देखते हैं कि इस देश में अभी कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन लगभग 47-48% है, शायद ही किसी देश में इतनी ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन होगा। एक कंसेप्ट आएगा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसको वही सभी सुविधाएं मिलती हैं जो एक परमानेंट वर्कर को मिलती है
उस फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट।
बिल्कुल बिल्कुल। और यदि वो 1 साल का फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है तो 1 साल के बाद उसे ग्रेच्युटी भी मिलता है। तो जो ग्रेच्युटी का प्रावधान जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के लिए 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद होता था, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ 1 साल बाद ही मिलेगा। इससे 2-3 चीजें होती हैं। देखिए, बिजनेस नेचुरल बिजनेस साइकिल के थ्रू जाता है, इकोनॉमीज इकोनॉमिक साइकिल के थ्रू जाती है। यदि बिजनेस चाहता है कि मुझे एक वर्कर की 3 साल के लिए आवश्यकता है तो 3 साल के लिए ले सकता है, लेकिन उसे पूरी वही सुविधाएं उसे देनी पड़ेंगी जो वो परमानेंट वर्कर के लिए देना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति होगा जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय होगा वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर होगा कंपनी के साथ, तो उसकी खुद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि मैं कंपनी के साथ सीधा काम कर रहा हूँ।
जी, और उनके हितों का हनन भी नहीं होगा।
बिल्कुल।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 तीसरा लेबर कोड है।
हाँ जी,
तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो क्या ये सोशल सिक्योरिटी नेट जिसकी हम बात करते हैं उसकी तरफ फोकस्ड है?
बिल्कुल। देखिए, यदि अभी हम देखें तो फॉर्मलाइजेशन में जो सोशल सिक्योरिटी है, ईपीएफओ और ईएसआईसी का कवरेज यदि हम देखते हैं तो 12-15% ही लोगों तक पहुंचता है। ओवरऑल सोशल सिक्योरिटी को देखें तो वो आंकड़ा बहुत आगे बढ़ गया, कुछ ना कुछ तरह की सोशल सिक्योरिटी मिलती है, वो लगभग 94 करोड़ लोग हैं, लेकिन जो फॉर्मल सिक्योरिटी है वो अभी भी कम है
जो एस्टेब्लिश्ड पैरामीटर।
बिल्कुल। और कई लोग हैं जो जैसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, उनको जिस तरह की सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिलती है।
तो वो कैसे सुनिश्चित होगी?
तो इसमें इस कोड में इन सभी के लिए, अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, सभी के लिए बोर्ड बनाया जाएगा, सभी के लिए स्कीम बनाई जाएगी। यदि आप गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर देखते हैं, इनके लिए सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, तो पहली बार गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर को रिकग्नाइज किया गया है किसी भी कानून के अंतर्गत। दूसरा यदि देखते हैं कि ईएसआईसी का जो कवरेज है वो अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट तक ही, जो नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट थी वहां तक हुआ करता था, पूरे देश में ईएसआईसी का कवरेज हो जाएगा। यदि हम देखते हैं कि जो 10 से कम वाले जो भी एस्टेब्लिशमेंट हैं वो भी स्वेच्छा से ईएसआईसी का कवरेज ले सकते हैं, और वहां जहां हैजार्डस प्रोसेस है, जहां खतरे वाली प्रोसेस है, माइनिंग हो सकती है, कुछ केमिकल फैक्ट्रीज हो सकती हैं, वहां तो यदि एक भी एम्प्लॉय है तो उसको भी ईएसआईसी का कवरेज मिलेगा।
यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से भी ध्यान रखा गया है।
बिल्कुल।
आपने भी कहा कि अगर हैजार्डस सिचुएशंस में काम हो रहा है
तो एक भी
लिए अलग शर्तें होंगी।
बिल्कुल, एक एम्प्लॉय भी है तो भी उसको ईएसआईसी का कवरेज मिलेगा।
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें, यानी कि वर्क कंडीशंस, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी हमने चर्चा की तो लगभग सभी बातों को तो समेकित कर लिया गया है, तो ये जो चौथा लेबर कोड है इसमें किन बातों की?
देखिए, कई वर्कर व्यवसाय की सुरक्षा है कि किस तरह से, यदि वर्कर के लिए किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए कि उसे कोई खतरा ना हो, वो सुरक्षित रूप से काम कर सके। इसके लिए पहले क्या होता था कि जो ये व्यवसायिक सुरक्षा थी ये सिर्फ 7 बड़े सेक्टर्स को थी, फैक्ट्रीज के लिए थी, माइंस के लिए थी, प्लांटेशन के लिए थी, ट्रांसपोर्ट के लिए थी, कंस्ट्रक्शन के लिए थी, डॉक वर्कर के लिए थी, बीड़ी और सिगार वर्कर के लिए। अब ये सभी एस्टैब्लिशमेंट में जिसमें भी 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं उनके लिए लागू होगी, और इससे भी बड़ी बात यह है कि यदि कोई हैजार्डस जो प्रोसेस में है, शायद माइंस में है, पोर्ट में है, डॉक में है, और कोई भी हैजार्डस प्रोसेस में है, तो यदि एक वर्कर भी है तो उसके लिए भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे। तो यदि और हम देखते हैं कि हर वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर देना अब आवश्यक होगा। 40 वर्ष से ऊपर के हर वर्कर को फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप कराना होगा,
वो वार्षिक तौर से,
वार्षिक तौर से
उसका हेल्थ चेकअप होना जरूरी।
बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम देखें कि मीडिया सेक्टर में ही देखें तो अभी तक सिर्फ प्रिंट जर्नलिस्ट और सिने वर्कर्स ही इन्वॉल्व होते थे, अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वोसेस के दायरे के अंतर्गत आ गया है।
यानी कि ये अगर इन सब लेबर कोड्स की बात करें और आप जो वर्किंग कंडीशंस की भी बात कर रहे थे, सुविधाओं की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या खासतौर पे अलग से महिलाओं के लिए भी कुछ अलग प्रावधान है?
महिलाओं के लिए अभी तक क्या होता था कि महिलाओं के लिए कुछ टाइप के एस्टेब्लिशमेंट में ही काम कर सकती थी, रात में काम नहीं कर सकती थी, तो कई बार उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी वो नहीं मिल पाती थी। अब यदि महिला की कंसेंट है और यदि ऑर्गेनाइजेशन सभी तरह की सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है तो महिला हर तरह के एस्टेब्लिशमेंट में काम कर सकती है, रात को भी काम कर सकती है और घर से भी काम कर सकती है। वर्क फ्रॉम होम भी पहली बार अलाउ किया गया है। दूसरी बात यही नहीं, जो क्रेश की फैसिलिटी है, पहले कहा जाता था कि इतनी महिलाएं हैं तो क्रेश की फैसिलिटी होगी, अब एम्प्लॉइज टोटल जिसमें मेन भी होंगे विमेन भी होंगे तो जेंडर न्यूट्रल बांधा है, 50 से ज्यादा होंगे तो क्रेश की फैसिलिटी होनी चाहिए।
मतलब किसी संस्थान के पास अगर 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं
बिल्कुल,
तो क्रेच की सुविधा
होनी पड़ेगी। जितने भी बोर्ड बनाए गए हैं उसमें या तो एक तिहाई महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है, चाहे सेंटर पर केंद्र पर बनाए जाएं, चाहे स्टेट पर बनाए जाएं। इवन ट्रेड यूनियन के भी जो काउंसिल बनाई जाएगी, नेगोशिएशन काउंसिल, उसमें भी विमेन की प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा। ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी भी यदि बनाई जाएगी उसमें भी प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन होगा। तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम है ये चारों कोड।
अब हमने इन सब लेबर कोड्स की चर्चा की आलोक जी, और ये हमने देखा कि किस तरह से जो एम्प्लॉयज हैं उनके हितों की रक्षा की जा रही है लगभग हर नजरिए से, हर तरीके से। अब अगर हम एम्प्लॉयर्स के लिहाज से देखें, इंडस्ट्री के लिहाज से देखें, तो उनके लिए क्या बड़ी बात है इन चार श्रम संहिताएं हैं या लेबर कोड्स जिनकी हम बात करते हैं, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई थी, तो उनको कैसे फायदा पहुंचेगा?
सरकार का जो पूरा फोकस है वो इंडस्ट्री को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए जिससे वो अच्छे से अच्छे क्वालिटी रोजगार दे सकें, सुरक्षित रोजगार दे सकें और अच्छी सैलरी दे सकें। तो यदि हम इंडस्ट्री को जकड़कर नहीं रख सकते हैं तो जो कोड हैं, संहिताएं हैं, इनमें क्या किया गया, जैसे हम देखते हैं पहले लगभग 1500 रूल्स हुआ करते थे, वो रूल्स अब 350 ही रूल्स हो गए हैं। यदि हम देखते हैं कि रिटर्न्स, पहले 31 रिटर्न फाइल किया करती थी कोई भी इंडस्ट्री, अब वो सिंगल रिटर्न हो गया है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। यदि रजिस्टर मेंटेन करने होते थे तो 84 रजिस्टर मेंटेन करने होते थे, अब सिर्फ 8 रजिस्टर मेंटेन करने होंगे। यदि रजिस्ट्रेशन है उसको 8 तरह के रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते थे, फैक्ट्रीज का अलग से होता था, BOCW बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर का अलग होता था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का अलग होता था, प्लांटेशन का अलग होता था, ESIC का अलग होता था, EPF का अलग होता था, माइग्रेंट वर्कर का अलग होता था, अब उसे सिर्फ सिंगल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लाइसेंस जो 4 हुआ करते थे उसको एक ही लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो सुविधाएं, जो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जो किया गया है वो उससे इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। और इसके साथ ही सभी प्रोसेस को डिजिटाइज किया गया है, रजिस्टर्स आपको फिजिकल मेंटेन करने की जरूरत नहीं, लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की सभी सुविधाएं दी गई हैं।
जी, ये बहुत ही बेहतरीन चर्चा रही आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में। और जिस तरह से आपने बताया कि भारत के श्रम सुधारों में ये जो 4 नए श्रम संहिताएं लाई गई हैं उनका क्या मतलब है, उनके क्या खास मायने हैं, और केवल एम्प्लॉयज के लिए नहीं बल्कि एम्प्लॉयर्स के लिए भी प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगा और सभी के अधिकारों का ख्याल इसमें रखा गया।
बिल्कुल,
बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से लागू 4 नई श्रम संहिताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा और पत्रकार विशाल दहिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में